नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की यात्रा से भारत फिनलैंड संबंध को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज, इसराइल का ईरान में सुरक्षा कमान केंद्रों पर हमला, ईरान में मरने वाले नागरिकों की संख्या 1000 से अधिक। ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। भारतीय विमानन कंपनी खाड़ी क्षेत्र में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए आज 58 उड़ान संचालित कर रही है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज शाम कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री स्टब रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के साथ ही मुख्य वक्ता हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर श्री स्टब ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका ये दौरा व्यापार सहित दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका ये दौरा भारत फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल राष्ट्रपति स्टब से होने वाली मुलाकात और रायसीना संवाद 2026 में उनके मुख्य भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में बासिज मुख्यालय और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के सिलसिलेवार हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन लक्षित कमान केंद्रों का इस्तेमाल ईरानी शासन पूरे ईरान में नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता था।
इसराइल रक्षा बल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इसराइली वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान की वायु क्षमताओं पर हमले जारी रखे हुए हैं और वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले ईरानी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसराइल की वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में ईरान में अब तक 1097 नागरिक मारे जा चुके हैं। एजेंसी ने कहा है कि मृतकों 181 बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के थे। इसके अलावा घायल नागरिकों की संख्या 5,402 हो गई है, जिसमें 100 बच्चे भी हैं। संस्था ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटों में ही कम से कम 104 हमले हुए हैं। इन हमलों में सैन्य अड्डों, चिकित्सा केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
वहीं पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच साइप्रस पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और हवाई रक्षा प्रणाली तैनात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन ड्रोन हमलों से लैस हेलीकॉप्टर भेज रहा है और अन्य रक्षा उपकरण भी तैनात कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने भी विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल को भूमध्य सागर में भेजने का आदेश दिया। इस संबंध में उनका कहना था कि फ्रांस इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उनके साथ खड़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए फ्रांस का आभार व्यक्त किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमान कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानें शामिल हैं। मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय विमानन कंपनियों की 1221 और विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले संबंधित विमानन कंपनी से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। अमेरिका की केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बारे में कहा है कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है और ईरान की जवाबी कार्रवाई की क्षमता तेजी से घट रही है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में कहा कि इस ऑपरेशन के 100 घंटे से भी कम समय में अमेरिका ने लगभग 2000 ठिकानों पर हमला किया है। श्री कूपर ने कहा कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो गई है और उसकी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर तथा ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ग्रॉसी ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित उनकी रिपोर्ट स्पष्ट और सुसंगत है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान के पास लगभग हथियार योग्य समृद्ध यूरेनियम का विशाल भंडार होना और निरीक्षकों को पूरी पहुंच देने से इनकार करना गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिमी एशिया में जारी हिस्से के बीच टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और अरकनसास में प्राथमिक चुनावों के साथ अमेरिका में मध्य अवधि चुनाव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। इनमें अमेरिका के मतदाता ये तय करेंगे कि नवंबर में होने वाले मध्य अवधि चुनाव में प्रमुख रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कौन से उम्मीदवार करेंगे। इन चुनावों में जब कांग्रेस और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के नियंत्रण दांव पर रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बिहार से भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। 16 मार्च को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि है। असम से भाजपा ने मौजूदा विधायक तेरश गोवाला और मंत्रिमंडल मंत्री जोगेन मोहन को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि भाजपा तीसरी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, माया चिंतामन इवांते और रामराव वाडकुटे को चुनाव मैदान में उतारा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नई दिल्ली के भोगपुरम स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए हितधारकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संचालकों के साथ परियोजना की समीक्षा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 मार्च को 2 दिन के दौरे पर अगरतला पहुंचेंगे। वे 8 मार्च को अल्बर्ट एक्स का युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बाद में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन शहर कुल्लू में राज्य सरकार अपनी पर्यावरण पर्यटन पहल के अंतर्गत कुल्लू जिले के कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है। इसके लिए कुल्लू सर्कल वन विभाग ने 16 से अधिक पर्यावरण पर्यटन स्थलों की पहचान की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय ने संत थिरुमनकाई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटा दिया है। ये प्रतिमा तमिलनाडु के थाडिकोम्बू स्थित श्री सौंदराजा पेरुमल मंदिर को वापस कर दी जाएगी। संग्रहालय ने 1967 में सोथबी की नीलामी में इस कांस्य प्रतिमा को प्राप्त किया था। ये प्रक्रिया कल शाम इंडिया हाउस में एक औपचारिक रूप से सौंपने के समारोह के साथ सम्पन्न हुई। पुदुचेरी सरकार की डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर यात्रा योजना के अंतर्गत एक जत्था कल रात पुदुचेरी से रवाना हुआ। ये जत्था डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने पुदुचेरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एन रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम, विधायक अनिल बन केंडीडी और आदरी द्रविद्रम तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर मुत्थम्मा मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना ने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत को अफगानिस्तान में व्यापक स्तर पर हमले करने का निर्देश दिया है, जिनमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाएगा। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि युद्ध के अंत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं।
सात रंग में खेल रही है देश भर में ढोल की थाप और होली है की गूंज के साथ वातावरण खुशियों के रंगों से सराबोर है। बसंत की बयार के आगमन के साथ गुजिया की मिठास और ठंडाई की खुशबू से होली का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। होली न केवल रंगों का उत्सव है बल्कि ये प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। खाकी चूनी देह की फीका हर बंधे, जिसने रंगा रूह को वो सच्चा रंगरेज।
होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा।
पिचकारियों से निकलता रंगीन पानी बच्चों के मन में अद्भुत उत्साह और उमंग भरता है। आज के दिन कई स्थानों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली और फूलों की होली को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोने के लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी रंगोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी में नागा साधुओं की अनूठी होली, गुलाल और फगुआ गायन से पूरी अयोध्या जीवंत हो उठती है। होली का त्योहार हमें कटुता और द्वेष को मिटाकर प्रेम और सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रंगानाम उत्सवे अस्मिन् लोके सर्वेषां जीवनम सुख शांति समृद्धि भी परिपूर्णम भवतु। आकाशवाणी की ओर से आप सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वहीं मध्य प्रदेश में भी होली धूमधाम से मनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य और देश के लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसान कैबिनेट के जरिए सरकार ने किसानों को होली को पूरी शान से मनाने का मौका दिया है। वहीं उज्जैन में भक्तों ने शिप्रा नदी के किनारे होली मनाई। महाकालेश्वर और माता हरसिद्धि मंदिर के पास फूल और अबील गुलाल के साथ साधु संतों ने भी होली उत्सव में हिस्सा लिया। जबकि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में होली का त्यौहार भगौरिया से उल्लास का माहौल है। झाबुआ, अलीराजपुर और धार जैसे जिलों में भील और भिलाला समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला रंगीन हाट बाजार पारंपरिक संगीत और शानदार लोक नृत्यों से पहचाना जाता है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
हिमाचल प्रदेश में भी रंगों का पर्व पारंपरिक उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश भर में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी सहित विभिन्न जिलों में ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक होली गीतों की गूंज से माहौल पूरी तरह उत्सवमय बना हुआ है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक एकत्र होकर हर्षोल्लास के साथ रंग उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के लोक भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी धर्मपत्नी सहित पहुंचे और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ रंग खेलकर होली का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाइयां दी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रंगों का ये त्यौहार लोगों के जीवन में एकता तथा भाईचारे को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये त्यौहार नवजीवन, आशा और भारत की सभ्यता की जीवंत भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कामना की कि ये त्यौहार सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि गुजरात, कोंकण और गोवा में 6 मार्च तक गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की यात्रा से भारत फिनलैंड संबंध को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज। इसराइल का ईरान में सुरक्षा कमान केंद्रों पर हमला। ईरान में मरने वाले नागरिकों की संख्या 1000 से अधिक। ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। भारतीय विमानन कंपनी खाड़ी क्षेत्र में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए आज 58 उड़ान संचालित कर रही है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और खेलों में आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज शाम कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।